जिस तपस्या भूमि में ब्रह्मा बाबा के पदचिन्ह हर हवा में, उनका एहसास जहां भी जाओ ऐसे लगता है बाबा फरिश्ते के रूप में सामने खड़े हैं। हमारे दादियों की तपस्या भूमि, जिस भूमि पर आकर भट्टी करना हर ब्राह्मण आत्मा का एक सपना होता है, पांडव भवन की भट्टी, पांडव भवन के भट्टे, बड़े प्रयास के बाद इस स्थान पर पहुंचे हैं जहां स्वयं भगवान का अवतरण हो चुका। ऐसे स्थान पर हम पहुंचे हैं और ऐसे भट्टी में डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का क्लास बना सोने पे सुहागा। आपका क्लास माना आध्यात्मिकता और साइंस, इसका जबरदस्त एक जोड़ रहता है। बाबा के आप ऐसे फरिश्ते हैं जिन्होंने दिल के मरीजों को दिलवाला बना दिया, और जो दिल के मरीज थे आज दिलवाला बनकर वही सेवा कर रहे हैं और बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे हमारे भाई साहब जो खास मेडिकल साइंस और मेडिटेशन, इसका एक सुंदर संगम कर दुनिया भर के लोगों को संपूर्ण स्वस्थ करते हैं, आज ऐसे ही एक सुंदर टॉपिक हम सभी के सामने लेकर आए हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। तो आइए हम आपके वो बहुत सुंदर, आप इसको जिस प्रकार से डिफाइन करते हो और जिस नजरों से आप इन शब्दों को, आप इन गुणों को देखते हो, हम सब तपस्वी भाई बहनें वो सुनने के लिए इच्छुक है और उत्सुक है। तो आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे जयपुर वैशाली नगर के भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है।
ओम शांति। इस विषय पर रूहान करने से पहले चलिए एक बार चलते हैं हम सभी उस अपने घर जिसमें हमको जाना ही है और जाने का समय भी आ गया। चलें इस देह और देह की दुनिया से, अपने मन बुद्धि को समेट मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइन हूं। चलिए इस यात्रा पर। शांति। अभी हम सबको चाहे ना चाहे माणी से परे जाने का समय आ गया, हम सबको जाना ही है, वापस घर जाने का समय आ गया है। और खाली हमें वापस नहीं जाना है, सबको साथ लेके जाना है। या अकेले जाना है? साथ लेके जाना है। कैसे जाना है? बाबा के साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना। तो साथ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने 63 जन्मों के पाप कर्म पहले भस्म करने पड़ेंगे, राइट? क्यों? बाबा के तो कोई पाप कर्म है नहीं, हमें अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से हमें क्या बनना पड़ेगा? फरिश्ता। फरिश्ता से क्या बनना पड़ेगा? देवता। देवता से क्या बनना पड़ेगा? मास्टर बीज रूप। शिव बाबा बीज रूप है ना, हमें अगर बाप का साथी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? मास्टर बीज रूप। देवता के बाद वो स्थिति आएगी। देवता अभी बनना है कि बाद में बनना है? अभी बनना है कि बाद में? सत्युग में जाके बनना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही बनना है ना, तभी तो हमारे चेहरे उचलन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी ना। जैसे ब्रह्मा बाबा के मस्तक के द्वारा क्या दिखाई देता था शुरू में ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था ना, तो सारा जीवन ब्रह्मा बापने के द्वारा क्या हम साक्षात्कार करते रहे फरिश्ता स्वरूप का, साक्षात्कार सभी ने किया। तो ब्रह्मा बाबा का अगर जीवन देखें, जो आज का विषय है त्याग तपस्या और सेवा, तीनों का ही मूर्त थे ब्रह्मा बाबा, राइट। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देख लें, समझ लें, तो ब्रह्मा बाप समान हमें बनना है। नंबर वन को फॉलो करें तभी तो नंबर वन बनेंगे, नंबर वन या कहें नंबर वन तो कहें फर्स्ट डिविजन में आ जाएंगे। तो देखते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं कि हमें कैसे बनना है। एक मैं इससे पहले हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखें, इससे पहले एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, एक तो 63 जन्मों के पाप कर्म हमने किए हुए हैं, उसको चुकतू किए बगैर हम बाप के साथी तो नहीं बन सकते हैं। तो उसमें भी दो स्टेज हैं। एक होता किसी का ऑपरेशन करते ना, क्या करते हैं किसी के अंदर ऑपरेशन कर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही ऑपरेशन कर देंगे, पहले क्या करेंगे एनेस्थेसिया से देंगे फिर ऑपरेशन करेंगे, राइट। तो पहला है अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति क्या करती है, हमको बेहोश कर देती है देह और देह की दुनिया से। अभी हमने कहा देह और देह की दुनिया से परे, अपने मन बुद्धि को समेट, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट, अशरीरी आत्मा बन परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाए। यह स्थिति ऐसी है जो हमें देह और देह की दुनिया से परे, जो अशरीर स्थिति है ना, जैसे जो स्थिति है ये दुनिया जो है ना, इसमें चार संकल्पों से ज्यादा की दुनिया है। ये दुनिया चार संकल्पों से ज्यादा की दुनिया, चार या चार से, ए बी सी डी कहते हैं। ज्ञान का सार रूप क्या है, ए बी सी डी, आत्मा बाबा कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा, राइट। ड्रामा यहां है, ड्रामा इस दुनिया में चल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब यहां है, और जैसे ही ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना आ गया आपको, तो आप कहां पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म वतन में, राइट। तो सूक्ष्म वतन की क्या स्थिति है, 3 से 1 की स्थिति। 3 माना अतिंद्रिय सुख, हम बाबा के सामने सम्मुख हैं, बाबा आत्मा बाबा संबंध, राइट, संबंध, हम बाबा सब संबंधों से बाबा के साथ हम समाये हुए हैं, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद बाबा के सामने है। बस एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा संसार, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। ये जब होता तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करते हैं। और 3 से 2 की स्थिति क्या है, अतिंद्रिय सुख की स्थिति है। 2 माना बाबा के गोद में चले गए, राइट। 2 आनंद की स्थिति, हम समा गए, लवलीन हो गए। 2 से 1 की स्थिति क्या है, मैं और बाबा। 2 से 1 की स्थिति क्या, लवलीन स्थिति, आनंद की स्थिति है, राइट। नदी सागर में समा के क्या बन गई, सागर बन गई, राइट। तो जो 1 है ना, 1 से भी कम हो गया ना, 0.9 पहुंच गए, तो क्या हो गए, अशरीरी हो गए, राइट। क्या बन गए, अशरीरी बन गए। और अशरीरी बने, अशरीरी 0.9 है, मतलब संकल्प चलने बंद हो गए। एक संकल्प भी नहीं रहा ना, अब संकल्प से परे चले 0.9। और शिव बाबा कितना है, शिव बाबा कितने संकल्प चलते हैं, 0.00000, कितने जीरो, जीरो ही जीरो, हमारे कितना 0.9। तो जब अशरीर आत्मा बनके हम परम धाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड होते हैं, तो हमारे संकल्प कहां जाते हैं, 0.9 से 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, है ना। हम जितना बाबा से उसमें समाते जाएंगे हमारा क्या होता जाता है, क्या होता जाता है, हम अशरीरी और गहरे अशरीरी बनते जाते हैं। 0.01, राइट, अशरीरी 0.001 क्या हो गया अभी, क्या हम जीरो बन सकते हैं, जीरो तो नहीं बन सकते, वो तो एक सिर्फ परमात्मा बाप ही है। तो जब हम 0.001 की स्थिति में पहुंच जाते तो हम क्या बन जाते हैं, इसमें देवहान खत्म, देह के संबंध संपर्क, अशरीरी में थोड़ा सूक्ष्म है, 0.9 है ना, तो 0.1 तो है ना, 0.8 है तो 0.2 तो है ना, थोड़ा तो है ना इधर का, शरीर से बाहर आए ना, शरीर की दुनिया से हम बाहर आए, पूरा खत्म नहीं हुआ है, राइट। जो मैंपन मेरा पर पूरा खत्म नहीं हुआ है। जब 0.1 हो गए तो हम कितना हो गया, 99% क्या हो गया, 90% हमारा देवान देवीमन खत्म हो गया। 0.01 हो गया तो फिर क्या हुआ, 99% खत्म हो गया, राइट। देवान देवीमन मतलब मैंपन मेरापन खत्म हो गया। अब 0.001 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 99.9% क्या हो गया, मैंपन मेरापन खत्म हो गया, राइट। तो ये खत्म हुआ तो क्या बन गए, हम निराकारी बन गए। क्या बन गए, निराकारी बन गए। और जो निराकारी बन के निर्विकारी बाप से, निराकारी बाप से, निराकारी बाप कौन है, 0.00। देखो हमेशा क्या बोलते हैं, निराकारी शिव बाबा बोलते हैं, अशरीरी शंकर बोलते हैं, राइट। अशरीरी आत्मा बन सकती है, परमात्मा सदा क्या है, निराकारी है। वैसे तो बाबा को हम देवी देही माने भी बोल देते हैं, शिव बाबा को भी ना, शिव बाबा को देही माने भी बोल देते हैं, आत्मा माने भी बोल देते हैं, और विदेही भी बोल देते हैं, और क्या बोलते हैं, शिव बाबा को हम क्या क्या बोलते हैं, ओम शांति देते हैं। शिव बाबा को हम देह माने भी बोलते हैं, शिव बाबा सदा देह माने है, शिव बाबा सदा आत्म माने है, शिव बाबा सदा विधेयी है, शिव बाबा सदा अशरीरी है, शिव बाबा सदा निराकारी है, और शिव बाबा को हम क्या बोलते हैं, बीज रूप भी कहते हैं, राइट। ये तो ये बाबा के भिन्न भिन्न, जैसे एक बाप होता है ना बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, बच्चे को कंधे पे बिठा देता है, अपने से बड़ा कर देता है, और फिर बच्चा और थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चा बाप घोड़ा घोड़ा घोड़ी बन जाता है, अपने कंधे अपने अपने घोड़े बन के उसको अपने ऊपर बिठा लेता है, राइट। तो जैसे जैसे बच्चा बाप जो है बच्चे के समान बन के दिखाता है, पर बाप क्या है, बीज रूप है, और थोड़ा उससे नीचे देखो तो निराकारी है, राइट। तो ये जो अशरीरी स्थिति है ना, ये बेहोश की स्थिति है, राइट। क्या स्थिति है, बेहोश की स्थिति। जब भी हम जब देह अभिमान जब एकदम अशरीरी होते हैं ना, जितना गहराई शरीर में जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होता है, हमारे शरीर में हम आत्मा अशरीरी बन के परम धाम में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए, और जैसे अशरीरी होते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल निकलते हैं जिनको एंडोर्फिन कहते हैं। एंडोर्फिन का नेचुरल मॉर्फिन है, मॉर्फिन समझते, अफीम। और वो जो दुनिया में अफीम है उससे भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। जो देह के जो भी पेन हो, दर्द कहीं का भी दर्द हो, उससे आपको पेनलेस बना देती है। देखिए कर्म भोग का आपको सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सेव करने की शक्ति आ जाती है। देव विमान के संबंध, देव विमान होते हैं, देव विमान में भी हिसाब किताब बनते हैं, देव विमान के संबंध संपर्क के भी हिसाब किताब होते हैं, और देव विमान के पदार्थ उनके भी हिसाब किताब बनते हैं, मतलब कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। उन सबसे आपको क्या कर देती है, बेहोश कर देती है, राइट। उसके बाद ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन अशरी स्थिति में नहीं होता है, ऑपरेशन अशरी स्थिति ऑपरेशन नहीं करती है। तो हमको क्या करती है, अशरी स्थिति क्या करती है, हमको देह और देह के दिन से बेहोश कर देती, राइट। उनको सहन करके समाने की शक्ति, वो जब अशरी टोटल बन जाए, बन गए हम, तो उसके बाद क्या होता है, निराकार स्थिति आती है। वो निराकार स्थिति आने के बाद जब निराकारी बाप से हम कंबाइंड होते हैं तो फिर हम निर्विकारी बनते हैं, राइट। निर्विकारी माना काम क्रोध लोमो अहंकार, ये काम क्रोध लोमो अहंकार विकार है 5, और संपूर्ण निर्विकारी का मतलब क्या है, जो देह विमान से हमारे अंदर आसुरी संस्कार पैदा होते हैं ना, उससे भी मुक्त, राइट। जैसे आलस्य से मुक्त, अलबेलेपन से मुक्त, सदा अलर्ट सदा एक्यूरेट, किसी के अवगुण दिखाई देने बंद हो जाएं, सदा गुण दर्शन करना, बदला लेने की भावना के बजाय रहम दिल बन जाना, सदा निश्चय और विश्वास से भरपूर बन जाना, बेफिक्र बादशाह बन जाना, चिंता नहीं भय नहीं, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत अवस्था और निर्भय अवस्था, और फिर जल्दबाजी नहीं, टाइम का प्रेशर काम का प्रेशर नहीं, धैर्यता पेशेंस, और इच्छा द्वेष नहीं, विश्व कल्याणकारी। तो ये स्थिति जो है संपूर्ण निर्विकारी स्थिति है। और संपूर्ण जितना जितना निर्विकारी बनते जाते हैं तो सेवा होती है। अगर मेरे अंदर विकार है ना, किसी तरह का थोड़ा भी विकार है, तो मैं भले कितनी मर्जी भाषण करूं, कितनी मर्जी क्लास कराऊं, कितना मर्जी कोर्स कराऊं, वो सेवा में नहीं गिनी जाती। वो दिल तक नहीं पहुंचती है, दिमाग तक तो पहुंचता है। मैंने भाषण किया, आपको ही भाषण करना आ जाएगा, आपको क्लास करानी आ जाएगी, ताली भी बजा लेंगे लोग, कि तो दिल के अंदर पहुंच जाए बात तो वो नहीं होगा, अनुभव हो जाए वो नहीं होगा। तो सेवा जो कब होती है, जितना जितना हम निराकारी बनते निर्विकारी बनते जाते तो सेवा होने लगती है। अब हम आते त्याग तपस्या सेवा के ऊपर, राइट। तो पहले स्थिति क्या चाहिए हमको, अशरीरी, फिर क्या चाहिए, निराकारी से निर्विकारी। इसने कहा निराकारी लास्ट में, पहले बाबा अशरीर स्थिति का अभ्यास करते रहे, बच्चों को महसूस होता था, दीदी को पता है कैसे बाबा कैसे अशरीफ, हम भी जाके बाबा के सामने जाके बच्चे अशरीरी बन जाते थे, देवान भूल जाते थे, कुछ कहने जाते थे पर कहना ही भूल जाते थे। तो बाद में बाबा ने लास्ट में क्या बोला, लास्ट दिन क्या बोला, निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी। और जब निर्विकारी बन के सेवा करते हैं तब बाबा से वो करण करावन हार की फीलिंग आती कि बाबा करावन हार है, मेरे द्वारा करा रहा है और हमको निर्हंकारी बना देता है। वो सेवा बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, वो हमारा मास्टर बीज रूप स्थिति को ले आती है, राइट। फिर हम बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बन के सेवा कर सकते हैं। अब हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में, क्योंकि मेरी दादी निर्मल शांता से बहुत बात होती थी, पुट्टू दादी हमारे पास 3 साल रही लगभग हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि दादी को जब फ्रैक्चर हो गया था, पैर का ऑपरेशन नहीं कराया, 3 साल अंत में हमारे पास ही रही। रोज शाम को आधा पौना घंटा उनके साथ बैठना होता था, बाबा के साथ की बातें सुनते थे, तो काफी सारी बातें डिस्कस होती थी। तो ब्रह्मा बाबा का जो जीवन था, वो अगर हमें सचमुच में इस रास्ते पर चलना है तो पहली बात है अंतर्मुखता। जो पहला पहला कदम है ना ब्रह्मा बाप का, या यूं कहें सचमुच में हमें 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करके बाबा के साथ साथी बन के जाना है, मास्टर बीज रूप बन के साथ जाना है। तो पहला हम इस रास्ते पे चले तो ये अंतर्मुखता की भट्टी है, राइट। अंतर्मुखता का मतलब में क्या है, अंदर में जो मैं आत्मा हूं, परमात्मा से कंबाइंड होकर सोचना है, परमात्मा से कंबाइंड होकर निर्णय करना है, परमात्मा से कंबाइंड होके देखना है, परमात्मा से कुछ भी पढ़ना है तो परमात्मा से कंबाइंड होके पढ़ना है, कुछ सुनना है तो परमात्मा से कंबाइंड होके सुनना है, कोई भाई बहन को सुनाना चाहे तो परमात्मा से कंबाइंड हो जाओ, किसी भी देहधारी से मिलना है, कुछ भी सुनना है, बीच में बाबा को ले आओ, ताकि वो उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कोई व्यक्ति कैसा भी, लौकिक में अलौकिक में, उसके प्रभाव में नहीं आना है। अभी याद है मुरली, प्रभावित होना माना, प्रभावित होना माना प्रजा बनना। हमें सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में आना है, रिगार्ड सबको देना है किंतु प्रभाव में किसी के नहीं आना, राइट। तो अंतर्मुखता का मतलब है कि हमें हमेशा बाबा से कंबाइंड होकर के, अंदर में जो आत्मा हो, शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है, हमेशा ऐसे कंबाइंड होकर सोचना, निर्णय करना, देखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना पीना, श्वास लेना, हाथों से कर्म करना, पैदल करना, कुछ भी कार्य करना है बाबा से कंबाइंड होकर करना। मुझे याद आता है एक बार दादी जी जब थे ना यहाँ पर, मैं 95 में यहाँ गया था माउंट आबू, वो दादी ने मुझे बता दिया क्या था कि मुरली के बाद 5 मिनट जरूर मेरे पास बैठ के जाना है, तो नियम बन गया। वैसे 5 मिनट तो कहने को होता था कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी हो जाता था। वो दादी कभी कभी जब अकेले में होते मुझसे कुछ ना कुछ कहती थी, कुछ सिखाने के लिए कुछ बोलती थी। एक दादी ने कहा इंचार्ज किसे कहते हैं, इंचार्ज यही कि पांडवपुन की बात है, इंचार्ज किसे कहते हैं। दादी बाहर बैठते थे, ये जो चांदनी चौक कहते ना, कुर्सी पर बैठी थी, कई बार अंदर मीटिंग रूम में बैठती थी। तो दादी ने कहा बताइए इंचार्ज किसे कहते हैं। मैंने कहा इंचार्ज मना हेड द डिपार्टमेंट, जो हमारे डिपार्टमेंट है पांडव भवन में, उससे मैं 40 के आसपास डिपार्टमेंट थे, हर एक का अपना अपना इंचार्ज है। नहीं, रियल मीनिंग क्या है इंचार्ज का? दादी ने कहा नहीं, इंचार्ज माना जो इन रह के, अंदर रह के अपने आप को सदा चार्ज करता रहे, राइट? और चार्ज करके अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा और सारे शरीर के एक अंग को चार्ज करता रहे। बाबा से बाबा जो सतो प्रधान सदाई सातों गुणों का सागर है, अपने हर कर्मेंद्रियों को, हर शरीर के हर अंग को सातों इंद्रियों से भरपूर करता रहे। वो जो भी उसके सम्मुख आए, जो भी उसके साथ डिपार्टमेंट में काम करने वाले साथी हैं, उनको भी सातों इंद्रियों से भरपूर करता रहे, राइट? वो है इंचार्ज। अंतर्मुखता और इंचार्ज एक ही बात है। इन रह के अपने आप को चार्ज करते हुए हर कर्म करना, बाह्यमुखी नहीं बनना है। अगर हम आंख दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दादी ने उसने शब्द कहा था, अगर हम किसी को अपने पद के नाम से या अपनी पोस्ट के हिसाब से अगर हम किसी को दबाते हैं तो हम क्या हुए? इंचार्ज ने क्या बने? आउटचार्ज। आउटचार्ज बनना, इंचार्ज बनना, इंचार्ज। तो ये ध्यान रहे ना, इंचार्ज, मैं इंचार्ज हूं, मैं अंदर रह के अपने आप को चार्ज कर रहा हूं और मेरे एक एक रोम रोम से सातों एनर्जी प्रवाहित हो रही, फील होना चाहिए, एक वायुमंडल बनना चाहिए, निरंतर तो उसमें रहना चाहिए। तो अंतर्मुखी क्या होता है? सदा सुखी कहते ना, अंतर्मुखता का सुख मिलने लगता है, बाप के साथ कंबाइन होने का सुख मिलने लगता है। वो जैसे जैसे बाप के साथ कंबाइन होने का सुख मिलने लगता है ना, अंदर ही अंदर हम एकांतवासी बनने लगते हैं। एकांतवासी का मतलब क्या होता है? एक के अंत में खो जाना। एक क्या है? शिव बाबा है। शिव बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। अब ज्ञान का सागर का अंत क्या है बताओ? ज्ञान क्या है? मैं आत्मा बिंदु हूं, मेरा बाप बिंदु है, है ना? बिंदु का बिंदु से संबंध है, और ड्रामा क्या है? बिंदु है। तो ज्ञान सागर का अंत क्या हुआ? बिंदु। पवित्रता का सागर का अंत क्या हुआ? मैं आत्मा बिंदु, हम साहिब आत्माएं बिंदु, एक बाप के बच्चे आपस में बिंदु बिंदु भाई भाई, राइट? परमात्मा से हमारे सर्व संबंध उस बिंदु से, हमारे साथ जो भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है इस जन्म में पिछले जन्मों में, उसको फुल स्टॉप। पवित्रता। शांति के सागर का अंत क्या है? मैं आत्मा बिंदु, हम सब आत्मा बिंदु, एक बाप के बच्चे, और जो बीत गया उसको बिंदु लगा के, बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइन होकर हम करें शांति। प्यार के सागर का अंत क्या है? एक बाप के बच्चे बिंदु आपस में भाई भाई। तो प्यार हम सबको एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, उनकी पालना करते हैं। अत्यंत सुख के सागर का अंत क्या है? वो भी बिंदु है। आनंद के सागर का अंत क्या है? बिंदु। सत्य को परखने की शक्ति के सागर का अंत क्या है? क्या परखना है हमको? सत्य क्या है? बिंदु, शिव बाबा बिंदु, उसका ज्ञान भी बिंदु का ही है और संबंध भी बिंदु का बिंदु से है, और यही परखना है ना हमको, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, और यही सर, ये सत्य है ना। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर का अंत क्या है? वही बिंदु है। विस्तार को सार बनाने की शक्ति का सागर का अंत क्या है? वही बिंदु है। समेटने की शक्ति का सागर का अंत क्या है? सहन करने की शक्ति के सागर का अंत क्या है? बिंदु है, राइट? और सामना करने की शक्ति का सागर का अंत क्या है? वही बिंदु है। सहयोग करने की शक्ति का सागर का अंत क्या है? राइट, वो ना आठों शक्तियां होंगी ना। तो ऐसे हम बिंदु बस इस एक, जैसे ज्ञान सागर को मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, बाबा ज्ञान सागर है, सर्व संबंध मेरे उसके साथ, इसके एक बिंदु बन के बिंदु बाप के साथ कंबाइन हो जाओ, उसमें अंत में चले जाओ, राइट? लंबा समय उसमें टिके रहो। पवित्रता का सागर क्या है? बिंदु। तो बिंदु में बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइंड रहूं तो क्या हुआ? ये अंदर का सुख लेना शुरू कर दो। उस बिंदु स्थिति में अंतर्मुखता का बेसिक आंसर क्या है? बिंदु। अंदर में मैं कौन? बिंदु, शिव बाबा बिंदु, हम सब बिंदु, राइट? और जो बीता कर्मों का हिसाब किताब था इस जन्म और पिछले जन्म का, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक जो कुछ हुआ है मेरे साथ, वो मेरे अपने कर्मों का फल था और परमात्मा के डायरेक्शन में हुआ है। किसी ने मुझे गाली दी, इंसल्ट की, धोखा दिया, दुख दिया या सुख दिया, महिमा की, क्यों की दी, क्यों किया? बाबा की डायरेक्शन में हुआ, ताकि वो चाहता, बाबा चाहता मेरे बच्चे का हिसाब किताब चुकती हो जाए। तो क्या आंसर क्या हुआ? तो ये जैसे हम इतना अंतर, जब अंदर का सुख मिलने लगता है ना तो बेहद की वैराग्य वृद्धि हम देखते हैं। ये ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम था, बेहद की वैराग्य। बेहद की वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? ना वैर ना राग। ये मेरे को विश्वनाथ दादा ने बताया था, मुरली में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आती क्योंकि विश्वनाथ दादा से हमने बहुत पालना ली। रोज हम 5 बजे जब अस्पताल खत्म होता था तो दादा को मैं घर पे हॉस्पिटल लेके जाता था कार, और दादा हमारे साथ 1 घंटा बैठते थे, कुछ ना कुछ हमको कहीं ना कहीं बाबा के साथ के अनुभव सुनाते, कुछ ना कुछ चीज हमें शेयर करते थे। तो दादा ने कहा वैराग्य का मतलब वैराग्य नहीं है खाली, ना वैर ना राग, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, है ना, बेहद का, बेहद मतलब सारे विषय में किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से बेहद का वैराग्य, मैं सबसे बस अंदर का सुख मिलने लगा ना, जब जब अपने हाथ में लड्डू आ जाता दोनों हाथ में, तो एक हाथ में लड्डू आ गया ना दूसरा छूट जाता है, तो अंदर से अंदर अंदर मुखी बने बगैर वैर का वैराग्य नहीं आता है। जब अंदर से वैर का वैराग्य आने लगता है ना, वैर खत्म होने लगता है, तो अनासक्त वृत्ति आ जाती है। अनासक्त माना कुछ देखने की इच्छा, कुछ पढ़ने की इच्छा, कुछ सुनने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कहीं जाने की इच्छा, मैं वहां घुमाऊं, वहां कर लूं, वहां कर लूं। जैसे विश्वनाथ दास इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थे, है ना, एकदम सदा अंतर्मुखी, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति। जब अनासक्त हो जाते हैं ना तो उपराम हो जाता, बुद्धि और मन क्या होता है, उपराम हो जाता है। अच्छा उपराम जब होता है तब एकांतवासी बनने लगते हैं, बिना उपराम हुए हमारा मन बुद्धि यहीं कहीं लगा रहता है, राइट, और बिना अनासक्त हुए हम उपराम नहीं हो सकते। जब उपराम होने लगते तो अनासक्त होने लगते हैं, सॉरी, तब हमारे अंदर एकांतवासी, एक केंद्र में खोने लगते हैं और तब एकाग्रता आने लगती है। ये ब्रह्मा बाबा के जीवन की बातें बता रहा हूं, कैसे बाबा एकांतवासी बन गए, एकाग्रत हो गए, और जब बाबा के अंदर एकाग्र होने लगे ना, ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा की पधरामणी कब हुई, जब बाबा एकाग्र होने लगे तो एक नाम ही आती चली गई। अब बाबा को क्या हुआ, बस एकांत में बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ चित्र बनाते रहते, दीवारों पे निकालते रहते थे, आत्मा आत्मा आत्मा, यशोदा भी आत्मा, नारायण भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, बाबा का कहते सुनते ना। और बेहद की वैराग्य होती बाबा को आई थे जब 1934 में बाबा को बनारस में साक्षात्कार हुआ था विनाश का, और साथ साथ सत्य सत्य आने वाली दुनिया का भी हुआ था, तो ये तब से शुरू हुआ था। फिर बाबा ने अंदर पुरुषार्थ 2 साल और चलो, फिर बाबा के अंदर क्या हुआ, तन, देखो दिल होता ना आत्मा का, दिल चेतना जिसे कहते हैं, अभी कल थे, कल था मुरली में, कल था परसों था, दिल कहां पर होता है, शरीर में, ये आत्मा का दिल है ना, दिल आत्मा में है, राइट, बुद्धि का एक एस्पेक्ट है दिल, दिल के आधार पे हमारा तीसरी आंख खुलती है, विवेक होता है, थर्ड आई ऑफ विजडम होती है, उसके आधार पे यथार्थ निर्णय की शक्ति या बुद्धि बुद्धि होती है, उसके आधार पे हमारा चित्त होता है। तो दिल में जो होता है ना हमारा, जो दिल में जो होता है उसकी याद अपने आप आती है। अब जब हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आई, अनासक्त प्राम वृत्ति आती है, एकांतवासी बनते, एकाग्रता आती है, एक नामी आती है, तो क्या होता है, अब एक नामी आ गए ना हर काम में वही, तो बाबा के अंदर तन मन धन और संबंध, 4 चीज हमेशा दिल में रहती है, मनुष्यों के दिल में, उसी से योग लगा रहता है। एक तो सबसे ज्यादा योग अपने तन से लगा रहता है, मन में जो हमने जो पुरानी मेमोरीज है उससे लगा रहता है, और दूसरा तीसरा धन से लगा रहता है, चौथा संबंध संपर्क से लगा रहता है। तो बाबा ने क्या किया, अपना तन मन धन और संबंध संपर्क चारों को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया, अपने मन से कर दिया पहले ही, तब शिव बाबा की पधरामणि हुई, तब शिव बाबा दिल में आ गया, राइट, जब कमरा खाली हो तब तो शिव बाबा आएगा। हमारे अंदर भी क्या होता है, हमारे तन का भान, देह का भान रहता है ना, देह विमान रहता है, मैंपन मेरापन रहता है, तन का मन का भी रहता है, धन का भी रहता है, और संबंध संपर्क का भी रहता है, 4 चीज रहती हैं, भले हम ज्ञान में चल पड़ते हैं, योग क्यों नहीं लगता, तो तन का भान नहीं करता, तन भी बाबा की अमानत है, ये तन मेरा नहीं, बाबा की अमानत समझ के यूज करना। ये धन मन भी मेरा नहीं, जो बाबा ने कहा वो ही मैं करूं, जो बाबा संकल्प है वो मैं करूं। धन भी बाबा का, मेरा नहीं, अब बाबा का है। इसलिए बाबा ने क्या बनाया, एक 5 महीनों का ट्रस्ट बना के उनको हवाले कर दिया। और संबंध संपर्क भी मेरी युगल नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं, बाबा ने उनको कभी फिर अपना नहीं कहा, कहा अपना उनको भी बाबा ने अपना भी नहीं कहा। और उन्होंने भी कभी फिर बाबा को यशोदा माता ने कभी उसको पति के रूप में नहीं देखा। उसके बाद चेहरा ही बदल गया ना, चेहरा और चलन बदल गया ना। नारायण दादा ने कभी उसको, फिर नारायण दादा बताते थे कि अब जब बाबा आ गया तो हमको अब लगता ही नहीं था ये हमारा बाबा है, हमारा बाप है, हमारा उसको बाप कहने की हिम्मत नहीं होती थी, हम बाबा ही बोलते थे, पहले बाबा नहीं बोलते थे। यशोदा भी उनको बाबा थोड़ी ना बोलती, यशोदा माता ही बाबा ही बोलती थी, वो भाव नहीं बदल गया। तो हमारे अंदर भी सचमुच में, अगर सचमुच में हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तन बाबा की अमानत है, बाबा का तन समझ के इसको यूज करना। खाली ब्रह्मा का रथ नहीं, हमारा रथ भी किसका है, बाबा का। इसको क्या कैसे तैयार करना है, कैसे सजाना है, क्या भी जो भी करना है हमें, कैसे इसकी मेंटेनेंस करनी है, क्या खाना खाना है, कैसे मेंटेन करना है, ये भी बाबा का। क्या संकल्प करने हैं, बाबा के मुरली में रोज मिलते हैं, उसी अनुसार चल रहा है, वो हमारा होमवर्क है। धन भी मेरा नहीं है, मैंने विदेशों में देखा, विदेशी कभी नहीं बोलते, वो कहेंगे बाबा की दुकान पे चलते, बाबा की शॉप पे चलते हैं। मैंने कहा चलो बाबा की शॉप पे हैं, तो बाबा की शॉप ले गए अपने अपनी शॉप पे, बाबा की शॉप, बाबा की कार में चलते हैं, बाबा के घर में चलते हैं, अपने घर में ले गया, है ना, हर चीज बाबा की, हर चीज बाबा की। बाबा के किचन में चलते हैं, चलो बाबा के बेडरूम में चलते हैं, हर चीज बाबा का, राइट। हमारे यहां तो कम बोलते हैं कि तो वो हर चीज बाबा का बोलते हैं, हर चीज अपनी बाबा की चीज को, बाबा की कार, बाबा का घर, बाबा का हर चीज बाबा की, राइट। तो ये हमारे अंदर, तब जब बाबा को हम समर्पण कर देते ना तो योग लगना शुरू होता है, राइट। उसके बगैर योग नहीं लगता है, नहीं तो हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कभी तन खींचता है, कभी मन खींचता है, पुरानी रिकॉर्डिंग भरी होती है ना, और वो खींचते रहते हैं, वो चल जाती, कभी फाइल चल जाती, कभी वैध संकल्प, कभी नेगेटिव तो नहीं चलता, पर वैध तो चलते रहते हैं। अगर आप 1982 की मुरलियां पढ़ेंगे ना, 1 अप्रैल 1982 ना, 3 अप्रैल फिर 7 अप्रैल ना, ऐसे 4 मुरलियां चली 13 अप्रैल तक, है ना, सॉरी 7 मुरलियां चली थी पूरी, 7 सप्ताह कोर्स, लास्ट मुरली 28 अप्रैल को थी। आप उसमें पढ़ेंगे ना, तो पहला त्याग का भाग्य है, फिर देहभान का त्याग, देह के संबंध संपर्क का त्याग, फिर देह के कर्मेंद्रिय को संबंध संपर्क का त्याग, ऐसे सारा महात्यागी, वरदानी, सर्वस्व त्यागी, है ना। तो मैं मुरलियां पढ़ी थी, वो मैंने देखा बहुत ही, आप 7 मुरलियां पढ़नी चाहिए जरूर, त्याग की गहराई में चले जाओ, सचमुच में इतना गहरा त्याग हो जैसे ब्रह्मा बाबा का था ना, तो त्याग अभी नहीं, तो पहले तो हमारा क्या लगना, योग लगना चाहिए, योग लगना, तब योग उससे लगता है जो हमारे दिल में होता है, उसकी याद आती है। और जब जैसे योग लगना लगता है तो पेपर आने लगते हैं, है ना। आज की मुरली में था ना माया, तुरंत कल की मुरली में था माया, तुरंत पेपर लेने को। माया क्या चीज है, जो हमारे 63 दिनों के पाप कर्म किए हुए ना, वो कहां पर है, अंदर ही रिकॉर्ड है। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है, वो स्थिति सामने आती है, फाइल खुल जाती है, रिटर्न जर्नी पे है ना, फाइल खुल जाती है। और फाइल खुलते क्या होता है, अपनी फाइल खुल गई, और पिछले जो उस आत्मा के साथ हमारे हिसाब किताब थे ना, वो उसके अंदर भी खुल गए, मेरे अंदर भी खुल गए। हालांकि मुझे ज्ञान है, समझ है, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, हमें एक बात के, तो भी क्या होता है, लगाव पैदा होता है, झुकाव पैदा। आज की मैं एक मुद्दे पढ़ रहा था, तो बाबा ने कहा 3 बातें, एक तो लौकिक प्रवृत्ति, त्याग में एक लौकिक प्रवृत्ति, दूसरी होती है शरीर की प्रवृत्ति, और तीसरी होती है सेवा की प्रवृत्ति। एक लौकिक प्रवृत्ति आ गई कि वो तो समझ खत्म हो गई, चलो वो तो हम जल्दी त्याग कर लेते हैं। फिर अपने शरीर की प्रवृत्ति, मुझे शरीर के लिए खाने पीने को चाहिए, मुझे ऐसा मेंटेनेंस चाहिए, कपड़े चाहिए, ऐसी चीज चाहिए, नहीं मुझे अपनी चीजें, ये बहुत उससे भी गहरी, लौकिक प्रवृत्ति से भी गहरी है। देखे संबंध तो अलग बात, अच्छा छोड़ दिए राइट, उनसे हम उपराम हो गए, मेरापन छूट गया, पर मैंपन ये बहुत उससे गहरा है, ये उससे भी गहरा है, तो इसकी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है राइट। और फिर उससे बड़ी प्रवृत्ति सेवा की प्रवृत्ति, अब सेवा मैंने भाषण करना शुरू किया, क्लास कराने शुरू की, भट्टी कराने, भट्टी में गए, इधर गए, नाम हो जाता है तो क्या होता है, फिर उसकी अलग प्रवृत्ति, फिर वो एक अलग से देहभान अभिमान ले आती है। इवन मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करता, मुरली कभी मिस नहीं करता, चार्ट लिखता हूं, इसका भी अभिमान हो जाता है, इसका भी मैपन आ जाता है, नहीं आता, तो वो उससे भी गहरी प्रवृत्ति हो गई राइट। तो त्यागी महात्यागी सदस्य त्यागी सिद्धार पे राइट। जो पहला स्टेप क्या था, त्यागी कौन से वाला, देह मन तन मन धन और संबंध संपर्क का त्याग, ये पहला त्याग हो गया है ना, ये पहला त्याग हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जब सहन, जब पेपर आने लगता है तो क्या होता है, फिर बाबा नजदीक आता है। बच्चा जब तक रोता नहीं ना, माँ अपना काम करती रहती है, जैसे बच्चा तकलीफ होती तो माँ क्या करती है, सारा काम छोड़ के उसके पास आ जाती है। तो जब जब पेपर आता ना और तब तकलीफ आती है रिटर्न जर्नी में, तो क्या होता है, बाबा हमारे पास आ जाता है राइट। तो बाबा हमारे पास आ जाता है, तो हमें क्या होता है, सहनशीलता आने लगती, बाबा के साथ का अनुभव क्या करता है, हमको सहनशीलता बनाता है। अच्छा इसमें वो टेस्ट है, तो इसमें क्या करना होता है, हम कहते हैं ना मंत्र यंत्र और मेन स्विच है। हमारा मंत्र कौन सा है, मन मना भाव, विक्रम विनाश करने का यंत्र क्या है, मन मना भाव, और फिर यंत्र उसका यंत्र मन मना भाव का यंत्र कौन सा है, क्लीन और क्लियर बुद्धि, या यूं कहें सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि राइट। और उसका मेन स्विच कौन सा है, मेन स्विच कौन सा है, सच्ची दिल साफ दिल। अगर मुझे ये सदा याद रहे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, ये मेरा साधारण जन्म नहीं है, शिव बाबा ने मुझे दिव्य, मनुष्यों के दिल में क्या रहती है, देवान देवीमान, देवीमान के संबंध संपर्क, देवीमान के पदार्थ, और देवीमान से पैदा होने वाले पांच आसुरी स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और आसुरी स्वभावों से जब आसुरी स्वभाव के वश होकर विकारों के वश होकर कर्म करते तो हमारे अंदर कुछ आदत संस्कार बन जाते हैं, जैसे आलस्य एक संस्कार बन जाता है, जो ब्राह्मणों का नंबर वन दुश्मन है, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की भावना, सहज माफ नहीं कर पाते, कोई हमारे साथ गलत कर देता है ना, हम निश्चय विश्वास नहीं रखते, निश्चय विश्वास खत्म हो जाता है, संशय होने लगता है अपने ऊपर भी, बाप के ऊपर भी, ड्रामा के ऊपर भी, और परिवार के ऊपर भी, विश्वास खत्म होकर अनुमान लगाने लगते हैं, चिंता और भय पैदा हो जाती है, ये आदत, चिंता एक आदत बन जाती है, डर एक आदत बन जाती है, जल्दबाजी एक आदत बन जाती है, कंपटीशन कंपैरिजन का, उसने किया ना मैं भी ऐसे कर लूं, कंपैरिजन किया, और एक ईर्ष्या द्वेष की आदत बन जाती है, ब्राह्मणों में बहुत बन जाती है, ये संस्कार बन जाता है, ये खाली 10 बातें नहीं, इससे आगे वो बहुत 10-10 और हो जाती है। तो मनुष्य के दिल में ये रहता है, जब हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा को दिव्य ब्राह्मण, तो हमारे दिल में कौन आ गया, शिव बाबा आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल में ये रिवाइज कर, रियलाइज करते रहो बार बार कि मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म, शिव बाबा ने मुझको ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और इसको बार बार रिवाइज, मेरे दिल में कौन बैठा है, सत्य की समझ का सागर बैठा है, ज्ञान का सागर बैठा हुआ, कितनी दूर बैठा हुआ है, यहीं तो बैठा हुआ है, सत्य की समझ क्या बोल रहा है मुझको, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ हर समय हर जगह हर कार्य में हर संबंध से तुम्हारे साथ हूं, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है गलत नहीं हुआ है, तुम्हारे कर्मों का फल था, मेरी डायरेक्शन में हुआ है, इससे इसको फुल स्टॉप लगा के अपने को आत्मा समझ के मेरे साथ कंबाइंड रहो, सर्व संबंधों को मैं सर वाली याद से। तो बाबा मुझे सोते की समझ का सागर मुझे अंदर, मैं तो यही करता रहता हूं बार बार, चलते फिरते उठते बैठते सत्य की समझ का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, पाव में पवित्रता का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, पवित्रता माना सबको सत्य रूप स्वरूप में देखना, बाबा सदा हमारा सत्य स्वरूप कौन सा, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप देखता है, कभी भी हमारा ये स्वरूप नहीं देखता है, देखता है क्या, नहीं देखता है ना, सदा प्राम धाम काला स्वरूप देवी देवता सब देवता। तभी तो मीठे मीठे बच्चे बोलता है, नहीं तो कड़वे कड़वे बोलता। मीठे बच्चे क्यों बोलता है? प्राम धाम वाला स्वरूप देखता है और देवता स्वरूप देखता है, दो बार मीठे मीठे बोल देता है। नहीं राइट, मुरली के शुरू में मीठे बच्चे और लास्ट में दो धार मीठे। मुरली के शुरू में अनादि जो स्वरूप देख के बात करना शुरू करता है, सुनाने के बाद क्या बोलता है? अब देवता बन गए, चलो मीठे मीठे हो गए। नहीं, दो हो गए ना मीठा मीठा, दो हो गया मीठा मीठा। तो बाबा हमको सदा वो देखता है, ये पवित्रता है। तो बाबा पवित्रता का सागर यहां बैठा, सदा मुझको आत्मा देखता है, सबको आत्मा देखता है। मैं क्या करूं? कोई भी हो, मैं क्या करूं? मैं भी सबका अनादि स्वरूप आदि देवता स्वरूप देखूं। शांति का सागर है, उसको कोई संकल्प नहीं चलता है, कोई विचार नहीं चलता है। और मेरे को क्या होता है? मेरे को विचार क्यों चलता है? ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, यहां पर ऐसा क्यों कर रहा है? होता रहे ना, सब अपना अपना पार्ट प्ले करें। मैं क्यों करूं? मेरा बाबा को संकल्प मुझे भी नहीं चलना चाहिए। कहते मेरा बाबा, दादी बोलती थी, मेरा बाबा चिंता नहीं करता, मैं क्यों करूं? गुलजार दादी बोलती थी, मेरा बाबा चिंता नहीं करता, मैं क्यों करूं? तो मेरे बाबा को संकल्प नहीं चलता, मेरा क्यों चल रहा है? राइट, शांति। मेरा बाबा प्यार का सागर है, यहां बैठा हुआ है। बाबा कहता ना मुरली में, बाबा कौन सा कहां पसंद है, कहां रहना पसंद है बाबा को? बाबा कहते हैं बच्चों, बाबा को मेरी दिल्ली पसंद है, बाबा मेरे दिल में रहता है। मैं कहां रहता हूं? बाबा के दिल में रहता हूं। अभी था ना मुरली में, था ना पीछे। तो बाबा को मेरी दिल्ली पसंद है, उसको और कहीं जगह पसंद नहीं आती। तो प्यार का सागर, प्यार माना क्या? बाबा सबकी पालना करता है, बीके नॉन बीके, कोई कैसा भी हो, डाकू चोर आतंकवादी, सबको बराबर पालना कर रहा है। नहीं, जैसे एक मां बच्चा, कैसे बच्चे, मां के चार पांच बच्चे हैं, दो बच्चे बहुत अच्छा करें, दो बच्चे गलत करते हैं, कहना नहीं मानते, उल्टे सीधे काम, मां क्या करती है? खाली अच्छा काम करने वाले की पालना करती नहीं, बल्कि जो कमजोर है उसकी ज्यादा पालना करती है। नहीं, इसे बहुत 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 भावना से जाते हैं, चोर डाकू भी भगवान के पास जाते हैं ना, बहुत भावना से, आतंकवादी बहुत भावना से जाता है, पता नहीं। और हम क्या जजमेंटल हो जाते हैं, हमारे पास लोगों को आने से डर लगेगा, नहीं लगना चाहिए ना, छुपाना शुरू कर देंगे। हमारे लौकिक में बच्चे होते हैं, वो भी छुपाना शुरू कर देंगे, बच्चों को लगे नहीं ये आत्मा जो है ना, बस इसको जो मर्जी जाके सुना सकते हो। देवताओं के जाते सामने जाते हैं ना, भगत जाते हैं, क्या करते, सब कुछ सुना देते हैं, कुछ भी के सामने नहीं सुनाएंगे, कितना कहें तुम तो ऐसे करते हो क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं बिल्कुल ठीक, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। भगवान के सामने जाके सारा बता देंगे, नहीं बताते ना, जिसको भगवान समझते हैं, राइट, देवता के सामने सारा बता देते हैं। तो हमारे पास भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अभी है ऐसी स्थिति, इतना प्यार है जो आपकी महिमा करे, आपकी ग्लानी करे, दोनों की बराबर पालना करो। मैं तो बड़ी दादी को देखता था, बाबा को तो नहीं देखा, बाबा को तो नहीं देखा, पर बड़ी दादी के मैंने देखा स्टेज कैसे थी। कुछ दादी को सुना के भी कुछ उल्टा सीधा भी सुना जाते थे, है ना। और दादी थोड़ी, दादी उसको बल्कि ज्यादा केयर करती थी, जो दादी को अच्छा सा बात कर रहा है उसकी कदर करती थी, तो उसकी ज्यादा केयर करती थी। यहाँ यज्ञ कई सारी बातें होती थी, जो कई बातें डिपार्टमेंट वाले क्या थे ना, कंप्लेन करते थे, दादी भाई ठीक से सेवा नहीं कर रहा। तो दादी जब वो भाई आता ना, दादी के तुम मेरे पर भेज दो, तो मैं देखता दादी उससे उसकी महिमा करना शुरू करती थी। भाई तुम इतने साथ से, मैं तुमको जब से जाए तुम जानती हो, तुमने इतनी ये ओम शांति भर इतनी सेवा की, दिन रात सेवा की, तुम युवा यात्रा में गए, इतनी तुमने ये किया, ये दादी को सब बातें याद हैं, दादी उसको सब बातें याद दिला रही। मैं सोचती दादी इसको डांट कब लगाएगी, इसको जो दादी डांट कर, इसने जो सेवा नहीं कर रहा है इसको कब बोलेगी। तो मैं इसको सेवा ही नहीं कर रही, उसको बोल ही नहीं रही, उसकी महिमा ही महिमा की जा रही, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, दादी तुम पे बहुत खुश है, दादी को आपकी सारी बातें याद है, आप तो बहुत अच्छे, बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो, दादी को बहुत प्यार है आपसे। तो इतनी देर, और फिर दादी उसको टोली देगी, फिर मुन्नी बहन को बोलेगी जो वो लेके आओ कल, वो बोले गिफ्ट लेके आओ, गिफ्ट देगी। और इतनी देर में तो वो आई बाहर रोना शुरू कर देगा, उसकी आंखों में ऐसे होने शुरू हो जाते थे, कहते दादी बस ये गलती होगी, इसके बाद कभी नहीं करूंगा, इसके बाद कभी नहीं करूंगा। फिर दादी कहती नहीं तुम ना ओम शांति भाव से निकलते ना, कुछ भी बात हो ना हमें चिटकी दे देना है, कागज पर लिख के दे दिया करो मुझे। अच्छा मैं नहीं मिलूं मुन्नी को दे, मुन्नी इसकी चिटकी मेरे को दे दिया कर, कभी मैं बाहर आके बैठते मेरे साथ मिल लिया कर। अब वो पानी पानी हो जाता था मेरे को, और फिर कभी गलती नहीं करते थे। दादी कहती, मैंने कहा दादी आप इनको कुछ कहते नहीं हो, दादी कहती मैं इसका संपूर्ण स्वरूप, ये संपूर्ण स्वरूप दिखाए ना, शीशा दिखाया ना दर्पण, तो इसको अपने आप रियलाइज हो गया। मैं बोलती ना अगर इसको तुम्हारी कमी है तो क्या होता, अपने आप को डिफेंड करता, डिफेंड करता, समझते ना, अपने आप कहता नहीं दादी मैंने नहीं किया, इसने ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया, उसको रियलाइज हो गया ना, तो ये प्यार, तो वो प्यार का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है। मैं कहता मेरे को इतने सुख का अनुभव नहीं होता, अरे अतीन्द्रिय सुख का आला, सब इंद्रियों से ऊपर का सुख का सागर बैठा हुआ है, तो वो मेरे अंदर तो बैठा हुआ है, आनंद का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, सत्य को प्रकट करने शक्ति का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर मेरे अंदर बैठा हुआ है, विस्तार को सार बनने की शक्ति, ये दुनिया का विस्तार है और बाप दादा की सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद सार है, तो वो वहां बैठा है। मैं अपने सूक्ष्म शरीर में ना मेरा मन शुद्ध हो जाए, मन मन अभाव कर मन शुद्ध हो जाए तो क्या हो गया, मैं कहां पहुंच जाऊं, देह और देह की दुनिया विस्तार से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट में बैठ के बाप सार रूपी बाप दादा की गोद में समा गई, बाबा कहता आओ बच्चे मेरी गोद में समा जाओ, विजुलाइज करने की बात नहीं है, वो रियल में फील होगा कि मैं बाप की गोद में, दिखाई नहीं देगा, आंख तो नहीं, आंख यहां से लेके जाओगे ऊपर ऊपर लेके जाओगे, आंख तो नहीं रहेगी, आंख दिखाई तो नहीं आंखों से देता है, वहां सिर्फ महसूस होता है, कहीं ऐसा नहीं, कई लोग इमेजिन करते हैं बाबा की गोद में बैठा हूं बाबा मुझे प्यार कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर, वो गलत है, है ना, तो आंख वो तो आंख से दिखाई देगा ना, आंख तो यही है, विजुअलाइज नहीं, क्या करना है, रियलाइज, तो अब इसको सिलवाइज और रियलाइज करते रहो बार बार, है ना, समेटने की शक्ति का सागर, माना वो वहां से भी मन बुद्धि को समेट के परम धाम में बैठा हुआ है, अशरीर स्थिति का सागर ऊपर बैठा हुआ, अशरीर बन के परम निराकार स्थिति का सागर ऊपर बैठा हुआ है ना, और बीज रूप बाबा ऊपर बैठा हुआ, सहन करने की शक्ति का सागर समान, इसको बार बार मैं तो यही अनुभव करता रहता हूं, और मैं कुछ योग करता भी, मैं आजकल ज्यादा योग यही करता हूं, बस बाबा को दिल में रिवाइज और रियलाइज करता हूं, तो जैसे ही दिल में बाबा को रिवाइज, तो बाबा की मुरली के जैसे बच्चा, बाबा कहता बाप की याद क्या है, एक बच्चा जैसे अपनी माँ को याद करता है ना, कैसे याद करता है बताओ, माँ को कैसे याद करता है, माँ की फोटो सामने लेके बैठता है, बैठता है क्या करता है, माँ की कही हुई बातें याद करता है ना, मेरी माँ ने मुझे ये कहा था, मेरी माँ ने, माँ दिल में रहती है, माँ की बातें याद आती हैं, और माँ की बातें याद आती, मुझे ऐसा बनना है, माँ मुझे ऐसा बन के ही दिखाऊंगा, तो ये बाबा की मुरली क्या है, बाप की बातें है ना, बाप के संकल्प है, तो अगर बाबा मेरे दिल में है, वो बातें मैं बार बार रिवाइज रियलाइज करूं, मुझे बाबा ये बनना ही है, आज के जैसे मुरली थी ना, मुझे बाबा बनना ही है, मुझे ऐसा बनना है, हाँ आज भी अभी चार हो गए, चार छह बज गए, मैं 70% तो बन गया हूं, बाकी 30% रात तक बन जाऊंगा, ठीक, दो बज गए 50% तो बन गया हूं, ठीक है, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, जैसे आज की मुरली थी तो बने, अभी 7 बजने वाले बन गए, कितने परसेंट बन गए, 80% बन गए, 3 घंटे बाकी हैं सोने में, ऐसे अपने आप से बात करनी, तो जितना इसमें खोते जाएंगे ना, तो तीसरी आंख खुल जाती है, तो दिव्य बाबा कहते हैं दिव्य ब्राह्मण जन्म देते दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, दिव्य ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है, खुलती कब है, जब दिल सच्ची और साफ हो जाए, सच्ची माने दिल में बाबा के सिवा कोई और ना हो, और साफ दिल माना जिसमें बाबा के श्रीमत के अलावा कुछ और ना हो, जरा भी मनमत परमत ना हो, साफ दिल, तो ये जैसे नहीं है ओटीपी डालते हैं ना, हमारा एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड इश्यू हो गया बैंक से, वो चलता नहीं है, जब हम डालते हैं तो ओटीपी आता है हमारे मोबाइल, ओटीपी आता है ना, फिर हम उसको डालते हैं ना, फिर तो एटीपी हमारा एटीएम कार्ड चालू होता है, तो ऐसे हमारे दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का कब शुरू होता है, कब शुरू होता है, जब दिल सच्ची और साफ हो जाए, फिर बाबा की याद, जो तन मन धन और संबंध का संपर्क में करने से दिल में बाबा आ जाता है, जैसे बाबा की पधरामणि मेरे दिल में हो गई, तो अब बाबा के दिन, तो ये क्या होता है, इस तरह से हमें बार बार रिवाइज रियलाइज करना चाहिए, और फिर हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, तो ज्ञान की गहराई हमें अपने धारण लेती है, पवित्रता की गहराई आने लगती है, शांति पास को फुल स्टॉप लगने लगता है, और सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइन होने लगता है, जब बाबा से कंबाइन होने लगता है, तो हमारा अंदर रूहानी प्यार पैदा होने लगता है, फिर कोई आत्मा हमको नहीं लगती, आत्मा ने मुझे दुख दिया था इसने मेरे को ऐसा कैसे, मैं बात नहीं करूंगा इसको, नहीं। सबके प्रति प्यार की, प्यार माना एक्सेप्ट करके पालना करने की फीलिंग आती है। प्यार की डेफिनेशन क्या, रूहानी प्यार की डेफिनेशन क्या है, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा को उसके सम्मान के साथ, बहुत बड़े सम्मान के साथ और स्नेह के साथ उसको एक्सेप्ट करना और उसके बराबर पालना करना हर आत्मा को। जैसे ब्रह्मा बाबा को बताते ना, ब्रिज कोठी के पीछे एक साधु था, उठते ही गाली देना शुरू करता था। बाबा क्या करते थे, क्या करते थे, बच्चे बोलते थे बाबा इसको भगा देते, नहीं बच्चे वो मेरा परम मित्र है, भोजन लग गया भोग भोग बन गया सबसे पहले उसको देख के आओ। तो ऐसी वाली भाषा ये अपने अंदर होनी चाहिए ना। तो ये जो जब हम करते हैं ना, तो इसमें जब हम करेंगे ना ये वाली, तो हमारे अंदर क्या हुआ, तो जैसे सबके प्रति स्नेह आ जाता है विश्व में हर आत्मा के, किसी के प्रति भी वो नहीं, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, वो मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, राइट। तब अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता है, तब आनंद का अनुभव होता है। और जब आनंद का अनुभव होता है ना, आनंद अतिंद्रिय सुख क्या, तीन की स्थिति, मैंने शुरू में बताया तीन की स्थिति, तीन से दो की स्थिति और दो से एक की स्थिति क्या है, आनंद की स्थिति है। और दो से जब एक हो गए ना, 0.9 हो गए, तब अशरीरी बन गए, परमधाम चले गए, अशरीरी बन गए परमधाम में चले गए। और जब अशरीरी 0.9 से हम आगे गए ना, तो बाबा शिव बाबा जीरो है, हम 0.7 हो गए, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.01, मतलब हम अशरीरी में खोते जा रहे हैं, बाप के समान बनते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर फिजिकल, हम मन बुद्धि से वहां खोए हुए अशरीरी बन के परमधाम घर में, क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे केमिकल बताए ना, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एक डोपामिन। तो ये जो हार्मोन पेन खत्म कर देते हैं, शरीर से नजारा बना देते हैं, राइट। और हमारे अंदर देह का मतलब बिल्कुल एकदम डिटैच हो जाते हैं, सारे जो कनेक्शन है, डोपामिन क्या करता है, पूरे कनेक्शन को जोड़ देता है। जो परम धाम में हम स्थिति है ना वो वाली, उससे हमारे ऐसा करंट आने लगता है हमारे शरीर में, जब देह से बिल्कुल देह के कर्म भोग हमको फील नहीं होते, जैसे कुछ भी हमको फील ही नहीं हो रहा है, देखे हिसाब किताब हमको फील होने बंद हो जाते हैं, राइट। तो सहनशीलता आ जाती है, तो सहन करके समाने की शक्ति आ जाती है। और इस सहनशीलता की शक्ति ऐसी है, हमको बेफिक्र बादशाह बना देती है, क्या बना देती है, बेफिक्र। तब मैंपन और मेरेपन का त्याग होता है। जब तक हम बेफिक्र बादशाह नहीं बनते ना, तो ये योग है, इससे पहले अश्विनी स्थिति तक का योग है। तपस्या कब शुरू होती है, जब ये बेफिक्र स्थिति आ जाती है, हमेशा बाप अनुभव कराता है मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय साथ हूं, हर जगह साथ हूं, हर कर्म में साथ हूं, हर संबंध से साथ हूं। तो हम बेफिक्र, जैसे ब्रह्मा बाबा का था ना बैगरी पार्ट में, कैसे ब्रह्मा बाबा बेफिक्र थे, 350 बच्चे बैठे, खाली पेट खाने को नहीं है, पर बाबा बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र तब मैपन मेरे पर जाते, मेरे को नहीं करना इंतजाम, कौन करेगा, शिव बाबा करेगा। तब मैपन मेरेपन का त्याग होता है, और मैपन मेरेपन का त्याग ही तपस्या है। तपस्या जीवन है जिसमें मैपन मेरेपन का अंश भी ना हो, राइट। बताया ना देहभान, देहाभिमान, देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ, इनका बिल्कुल त्याग हो गया, एकदम अशरीर स्थिति, जैसे बाबा की स्थिति वो बन गई थी अशरीरी, चलते फिरते उठते बैठते बाबा खो गए, बाबा किसे, बाबा यहां यहां पर है ही नहीं। तब मैपन मेरेपन का त्याग, तब निराकारी स्थिति बनती है, निराकारी, निराकारी बन गए, निराकारी मतलब देह की दुनिया से हम बिल्कुल परे हैं, है ना, निराकारी बन के, निराकारी बाप से कम है, निर्विकारी। अब हमारे जो भी कर्म होते ना, काम क्रोध लोभ अहंकार का अंश भी खत्म होने लगता है, राइट। अंश खत्म होना माना क्या, जितने विकारों का वेग होता है, वेग समझते हैं, क्रोध का वेग आता है, वेग माना जोर से इंपल्स आती है, कोई व्यक्ति हमसे गलत करता है तो हमें क्या आता है, मैं भी ऐसे करूं, काम विकार का भी वेग आता है, इच्छा पैदा होती है जोर से, क्रोध भी, लोभ का भी वेग होता है, वेग समझते हैं ना, रफ्तार से आता है, और मोह भी वेग से आता है, अभी देख लो उसको, अहंकार का भी वेग आता है। इसको सहन करने की शक्ति, इसको समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, वेग वहीं कभी रुक जाए, समा भी लो उसको, उसे कुछ हुआ ही नहीं, सामना करने की शक्ति, और भी एक के पीछे एक आता ही रहता है, आता ही रहता है, खत्म नहीं होता है, उसको जो तंग करे उसको भी सहयोग करने की शक्ति। तो ये तपस्या शुरू होती है तब, वो धीरे धीरे खत्म होते 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 एकदम खत्म हो जाता है, राइट। तो निर्विकारी बनने लगते हैं, राइट, मतलब विकार उनके फिर बाल बच्चे ही भस्म होने लगते हैं, आलस से अरवेलापन, सदा अलर्ट और एक्यूरेट रहने लगते हैं। पर क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना अभी, तो फिर हम जब निर्विकारी स्थिति बनती है ना, तो अशरीर स्थिति बनने से क्या होता है, हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है। चित्त माना हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब, और जब हमारा मन, तब हमारे मन में, चेतन मन में कौन सी फाइल खुलने लगती है, सत्व प्रधान फाइल है, शांति की, प्यार, खुशी की, शांति का आनंदमय हो गया, सच्चित आनंद सर बुद्धि हो गई। अब मन क्या होने लगता है, क्लीन, माना अब बाबा की मुरली अंदर बजने लगती है, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा, नहीं तो बुद्धि मुरली याद नहीं आती है, मुरली के पॉइंट याद नहीं आते, बाकी सब बातें याद आ जाती हैं, चिंतन तब मुरली का शुरू होता है। तो हमारी बुद्धि जब क्लीन और क्लियर हो गई, या बुद्धि सच्चित आनंद स्वरूप बन गई, दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप है, जो दिल में है वो चित्त में है, और तब चित्त शांत हो गया, तब चेतन मन में मुरली चलनी शुरू होती है, और जब मुरली चलनी शुरू होती है तो मुरली का चिंतन माना उनको बार बार रिवाइज रियलाइज करते हैं, तो अंदर से हमारे अंदर उससे पवित्रता है। हम बाबा की बातों को रिवाइज रियलाइज करें तो बाबा तक याद पहुंच, यही बाबा की याद है। मन में जब होता तो हमारे अंदर परिवर्तन शुरू होता है, बुद्धि में जो कर रहे हैं ना, जैसे मैंने किया, पवित्रता भी की, शांति भी की, प्रेम भी किया, वो कन्वर्ट नहीं होता कर्मों में, राइट। हमारे ब्राह्मणों का हर चीज मन में आनी चाहिए, मनमना भव में आना चाहिए। ये मुरली, रोज की जो मुरली है ना, जब तक ये बार बार नहीं बजेगी ना अंदर, ये बार बार आज की मुरली का, जैसे बिगड़ी को बनाने वाला था, है ना, जब तक पावन नहीं बने वापस नहीं जा सकते, तो पावन बनने की धुन लग गई कि बाबा मुझे पावन बनना है, कैसा पावन बनना है ना, टाइम नहीं है। तो 7 लेवल की पवित्रता होती है, ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्मचारी बनने में 7 लेवल की पवित्रता होनी चाहिए, 7वें लेवल की पवित्रता आ जाए, तो वो लेवल की पवित्रता हमारे अंदर आ जाए, वो उसकी धुन लग जाए कि मुझे जैसे ब्रह्मा बाबा ब्रह्मचारी था, कैसे था वो, मुझे वैसा बनना है, वो धुन लग गई, तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचे और बाबा के पदम गुणा होकर मेरे पास आते हैं। और जब मैं बाबा कौन है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, स्नेह का सागर, तो मेरे पास ये सब पवित्रता, शांति, स्नेह आ गया, विचार स्लो हो गए, सबके प्रति कोई विचार चलने बंद हो गए। और जब ये अंदर घूमता है ना, वृत्ति वृत्ति माना संकल्प भावना, वृत्ति माना घूम रहा है, जब पंखा घूम रहा है ना तो क्या हो रहा है, अब ठंडी हवा आनी शुरू हुई, ठंडी हवा माना अतिंद्र सुख आनंद आना शुरू हो गया, ये मक्खन मिलना शुरू हो गया, अतिंद्र सुख में खो जाते हैं, आनंद में खो जाते हैं। जब आनंद में चले गए तो अशरीर स्थिति का अशरीर बनने लगते हैं, माना अब हम जैसे गर्मी लग रही थी, हवा आ गई, पसीना सूख गया, अब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अशरीर बन गए तो मैं अपन मेरापन खत्म हुआ, और फिर मन में, वो तो बुद्धि में था, अभी मन में खत्म होने लगा, तो निराकारी बन गए। अब निर्विकारी जैसे बनने लगते ना, अब उस स्थिति में रहकर हमारे चेहरे से जो बात करते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते थे, तो उस वायुमंडल बन जाता है, उसमें रहकर जो बात करते ना वो रिकॉर्ड होने लगती है, स्मृति वो अंदर हमारे अंदर रिकॉर्ड होने लगती है, सेवा में रिकॉर्डिंग होती है। जब निर्विकारी, जितना निर्विकारी बनते जाते, रिकॉर्डिंग होते जाते, अभी तो विकारों की रिकॉर्डिंग थी पहले, तो अब क्या होने लगती है, निर्विकारी की। फिर रिटर्न चढ़नी है तो अगला जन्म शुरू हो जाता, फाइल शुरू हो जाती, पुरानी फाइल किसी और के साथ मेरे खुल जाती, या उसी व्यक्ति के साथ पुराने कोई जन्म की फाइल खुल गई, तो फाइल अब वापस फिर दिल में खराबी आ जाती, फिर दिल से वापस शुरू होते, सच्चे दिल, साफ दिल, फिर तीसरी आँख खुलती, फिर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, फिर दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट एक्टिव होती, फिर सूक्ष्म वेतन में जाते, फिर चित्त शांत होता, फिर दोबारा चिंतन शुरू होता, बाबा के दूसरे पॉइंट को याद करते, तो सारा दिन इसी में लगे रहते। ऐसे करते करते सज्जनों के जब पाप कर्म भस्म होते जाएंगे ना, तो हम निर्विकारी बनते जाते, अशरीर निर्विकारी बनते जाते, तो इसको ही तपस्या, त्याग से तपस्या बनते जाती। और तपस्या से क्या होता जाता, निर्विकारी स्थिति में रहकर सेवा करते, सेवा में ना जो कुछ भी जब बात करते, सेवा नहीं, भाषण करने की बात नहीं है, ब्रह्मा बाबा कोई भाषण करते थे क्या, किसी से मिल रहे हैं, उपले बना रहे हैं, अनाज साफ कर रहे हैं, जो बाबा के पास आया उस सेवा हो गई, चेहरे और चरण द्वार सेवा हो रही ना, तो जितना निर्विकारी बनते जाते सेवा होती जाती और रिकॉर्ड होती जाती, तो स्मृति स्वरूप बनते जाते, है ना, 7 गुणों का स्मृति स्वरूप, ज्ञान का, पवित्रता का, शांति का, प्रेम, सुहाना, स्मृति स्वरूप बनते जाते। और जैसे हम और आगे बढ़ते, और रिटर्न जर्नी में 35वां जन्म हो गया, 34वां हो गया, 30वां हो गया, 25वां हो गया, 21वां पहुंचा तो कहां क्या हो गया, 10,000 के पाप कर्म। हम भाई हम देवताई रिटर्न जर्नी पे पहुंचे ना, कहां पहुंच गए, त्रेता युग में पहुंच गए, राइट। तो हमारा क्या हुआ, सर्वगुण संपन्न, पर 16 कला नहीं, 14 कला की स्टेज आ गई। तो धीरे धीरे 14 कला, फिर निर्विकारी, फिर मर्यादा, मर्यादाएं बढ़ती जाती, यही चार नियम चार मर्यादाएं ब्राह्मणों की बढ़ती जाती। फिर रिटर्न जर्नी आगे पहुंचे, सत्युग का 8वां जन्म आ गया, सत्युग के आगे फिर होते होते सत्युग का पहला जन्म आ गया। तब तक हम क्या बन जाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधम। तो ये स्थिति हमारी बनती जाती और हम क्या बन जाते, एकदम हमारा चेहरे और चरण के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होती रहती, राइट। और ऐसी स्थिति बन जाती, हम यहां बैठे हैं, यहां हाहाकार हो रही होगी दुनिया में, विनाश हो रहा होगा, हम कहां होंगे, यहां सही सही यहां होगा, हम मन बुद्धि से कहां होंगे, अपने महलों में होंगे, हम रास कर रहे होंगे, सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ क्या फर्क, शुभी रस पी रहे होंगे, दुनिया में खाने पीने को नहीं होगा, हम वहीं खा पी रहेंगे। दीदी बता सकती है, जब भोग लगाते हैं ना, दादी गुलजार दादी को सुबह सुबह उठते थे ना, जिस दिन भोग दादी लगाती थी तो दादी कहती मेरे को भूख नहीं है, सूक्ष्म वतन में खा के आई, पेट भरा हुआ है, तो दादी उसमें अमृत पर भोजन नहीं करती थी। जब 11 बजे लगाते थे, कई बार सुबह सुबह लगाते थे, दादी कई नीलोबन कहती नहीं बाबा, दादी ने आज भोजन नहीं करेगी, दादी का पेट भरा हुआ है। सचमुच में ऐसी फीलिंग आती है, हम खा पी के हैं, पेट भरा हुआ है, ऐसा ही अंत में होगा, राइट। तो ये सेवा, जैसे जैसे हम ऐसे होते जाएंगे ना, तो हम क्या होगा, बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू हो जाएगी, और बेहद की तो निरहंकारी स्थिति बनती जाएगी, सारे विश्व को अपने आप सेवा होती जाएगी। यहां बैठे बैठे मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अमरीका जाऊं, लंडन जाऊं, कहीं जाऊं, नहीं, अपने साक्षात्कार, जिस आत्मा को साक्षात्कार जो चाहिए उनको वहीं फील हो जाएगा। जैसे टेलीविजन के द्वारा मूर्ति जाती है ना, आपका फोटो दिखाई देती है ना, आपका साक्षात्कार होता है, आपको नहीं पता, आप ऐसे बन गए, लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, कर्मातीत बन गए ना, अभी आपका साक्षात्कार बन जाएगा। तो यह है त्याग से, किसका त्याग, मैं अपन मेरेपन का त्याग। तो योग क्या है, योग में तन मन धन संबंध संपर्क का समर्पण है, और उसके बाद सहनशीलता, बेफिक्र भाषा, तब मैंपन मेरेपन का त्याग, तपस्या जीवन है। 14 साल की भट्टी क्या थी, मैंपन मेरेपन का त्याग नहीं था, मतलब मैंपन मेरेपन का अंश भी नहीं था, तो भट्टी थी, सोते भी भट्टी है, योग निद्रा भी, नींद भी योग निद्रा है, वो भी निद्रा में श्वासो श्वास याद है, वो श्वासो श्वास सेवा है। दादी रतन मुनि को तो हमने देखा, दीदी ने शायद देखा हो, दादी कोई पर मुझे रात को बुलाते थे 12 बजे 12:30 बजे, दादी रात में सो रही है और भाषण कर रही है, सभा के सामने भाषण कर रही है, पूरा भाषण चल रहा है, दिन में दादी बोलती नहीं थी, मुख से नहीं बोलती थी, रात को भाषण चल रहा है। कई बार वो बहन का फोन आएगा, गुप्ता जी को गाड़ी लेके आएगा, गुप्ता जी देखो दादी क्या कर रही है, फिर मुझे आता 1 बजे तो दादी का भाषण चल रहा है, 15 मिनट दादी भाषण कर रही सभा के सामने, बड़ी सभा के सामने। वो दिन में दादी बिल्कुल, वो दर्द हो रहा है, बुखार 101 102 103 है, दादी मुस्कुरा रही है, मैं दादी कैसे हो, मुस्कुरा रही है बस, निमोनिया हो गया तो भी मुस्कुरा रही, सांस नहीं आया तो भी मुस्कुरा रही। मैं देह में रहते अश्री दी, देह में रहते विधेयी है ना, और स्थिति कैसी, सारे विश्व की सेवा हो रही है। तो ये स्थिति हमारी इस तरह से बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा। अंतिम स्थिति हमारी क्या होगी, हमें कोई भाषण नहीं करना है, साइलेंस पावर के द्वारा अपने आप सेवा होती रहेगी। तो हमको अपना क्या ध्यान करना, देखो सूक्ष्म में देखो, मैं अपन मेरापन है, इसका त्याग। पर इससे पहले क्या स्थिति चाहिए, अंतर्मुखता, फिर भेद की वैराग्य वृत्ति, अंतर्मुखता का रस लिया तो भेद की वैराग्य वृत्ति, भेद की वैराग्य वृत्ति आई तो तन मन धन का समर्पण होगा, समर्पण होगा तो योग लगना शुरू होगा, योग लगेगा तो क्या होगा, बाबा के नजदीक वो वाली स्थिति आएगी ना, दिल में बाबा आ गया, तो दिल में बाबा आ गया तो सच्चे दिल साफ दिल दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का चिन्ह खुल गया, ज्ञान पवित्रता शांति स्नेह आ गया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई, सूक्ष्म वतन में बाबा दादा गोद में पहुंच गया, तिंदे सुहा, ये पर बुद्धि में हो रहा है, तिंदे सुहा आनंद की अनुभूति हो गई, तो अश्री बन के परम धाम घर में चले गए, तो चित्त शांति का ग्रंथ में हो गए, देखे कर्म भोग अब सहन हो रहे हैं, समा रहे हैं, मतलब फील नहीं हो रहे, कर्म भोग चुप्त हो रहे, कर्म भोग फील नहीं हो रहे, कर्मों के हिसाब तक फील नहीं हो रहे, हम बेहोश हो गए जैसे, अब मैं अपने मेरेपन का त्याग हो गया। बेहोश आदमी को मैं अपने मेरापन होता है क्या, क्यों काट रहे हो भाई मेरे को, मेरा पेट क्यों काट रहे हो, फिर होता है क्या, जो मर्जी करो है ना, ऑपरेशन करो ना, तो काट दिया ऑपरेशन कर टाके लगा दिए, होश आई तो फिर पता लगा ऑपरेशन हो गया। तो फिर ये स्थिति में तपस्या होती है, तपस्या से फिर बाद में निर्विकारी स्थिति से सेवा होती है। त्याग तपस्या सेवा लिख दो ऊपर नीचे, तो निराकारी निर्विकारी निर्विकारी, मैंपन मेरे पन के त्याग से निराकारी बनते हैं, निराकारी स्थिति से तपस्या होती है, तपस्या से क्या होता है निर्विकारी बनते हैं, निर्विकारी से फिर सेवा होती है, और सेवा से क्या बनते हैं निरहंकारी बनते हैं, निरहंकारी बनते हैं तो नाश में नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा के 8 कदम भी थे, पहला कदम अंतर्मुखता, दूसरा कदम बैर की वैराग्य वृत्ति, तीसरा कदम तन मन धन संबंध संपर्क समर्पण, चौथा सहनशीलता, पांचवा बेहद की बेहद का बेफिक्र बादशाह, छठा त्याग तपस्या सेवा, सातवां निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, और आठवां नष्टो मोह स्मृति। ओम चलिए 15 मिनट हम बाबा की पावरफुल याद में है ना सर, श्री मन के परमधाम घर में श्री बाप से कंबाइंड हो जाएंगे राइट, और अपने स्थिति में एकदम डिटैच होके 0.01 तक पहुंच जाएंगे है ना, और फिर हम निराकारी बन के निर्विकारी बाप से कंबाइंड हो जाएंगे ठीक है, निराकारी बाप से निर्विकारी स्थिति का अनुभव करेंगे और ऑटोमेटिक बेहद की सेवा होगी, मैं अपन मेरेपन का त्याग।
डॉक्टर साहब का हम सभी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, त्याग तपस्या सेवा और दादियों के उदाहरण, और उसके साथ साथ प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, क्योंकि डॉक्टर होने के कारण दादियों के पास जाना आपका बहुत सहज होता था, और उसी के साथ साथ देही अभिमानी स्थिति निराकारी स्थिति बहुत सुंदर उन्होंने अनुभव कराया, इसलिए सारे क्लास की तरफ से सारे भाई बहनें मिलकर वापस उनका एक बार शुक्रिया करता हूँ।